खुद को वहां सही सलामत अकेले देखकर बहुत से सवाल आए होंगे तुम्हारे मन में। उनका जवाब मैं दे देता हूं। तुम अब भी अर्जुन की पत्नी हो, तुम पर उसका हक है, और मैं पीठ पीछे किसी को धोखा देकर उसकी वाइफ के साथ रात बिताने के सख्त खिलाफ हूं। इसलिए कल हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। कल रात तुम नशे में थी तो वहीं सो गई। मुझे कुछ जरूरी काम था इसलिए मुझे तुम्हें वहां अकेला छोड़कर जाना पड़ा। अगर तुम सही मायनों में मेरी बनना चाहती हो और तुम्हें सच में मुझसे प्यार है, अगर तुम इस बार मेरे लिए लॉयल हो तो तुम्हें इसे साबित करना होगा। उसके बाद ही मैं तुम्हें अपने करीब आने का हक दे पाऊंगा। दो दिन के अंदर मेरा आदमी तुम्हारे पास एक फाइल लेकर आएगा और तुम्हें उस पर अपने ससुर और पति के साइन लेने होंगे। उसके साथ ही तुम्हारे और अर्जुन के डिवोर्स के पेपर्स भी होंगे। ये तुम्हारा टेस्ट होगा। अगर तुम इसमें पास हो गई, अगर तुमने उन पेपर्स पर अपने ससुर और पति के साइन करवाकर उन्हें मुझ तक पहुंचा दिया, तो मैं तुम्हारी पहले की सभी गलतियों और धोखों को माफ करके तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर लूंगा। और अगर तुम मेरा काम नहीं कर सकी तो दोबारा मुझे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझे सारी मीडिया के सामने तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और एक आखिरी बात, तुम ना मुझे फ़ोन करोगी और ना ही मैसेज। जब वो फाइल तुम्हारे पास पहुंचेगी तो मैं खुद तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। उसके बाद जैसे ही तुम अपना काम पूरा करोगी, मैं हमारे रिश्ते को आगे बढ़ा दूंगा और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने पास ले आऊंगा। देखते हैं इस बार तुम मुझे हासिल करने के लिए इतना सा काम कर पाती हो या नहीं। निया ने जब मैसेज पढ़ा तो पहले वो थोड़ा परेशान हो गई कि जाने शान कौन से पेपर्स भेजने वाला है उसे। फिर उसने मन ही मन सोचा कि चाहे मन पेपर्स में कुछ भी क्यों ना लिखा हो, उसे उससे क्या फर्ज पड़ेगा। उसे तो वैसे भी अब उस घर से जाना ही है, और ये सोचते हुए उसके लबों पर शैतानी मुस्कान फैल गई। निया ने भी मैसेज का रिप्लाई कर दिया। फिर अपने मेकअप और कपड़े ठीक करके उसने स्टॉल से अपना चेहरा कवर किया और वहां से निकल गई। शान के फोन में मैसेज की बीप बजी तो उसने उसका मैसेज पढ़ा। तुम्हें अपना बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ और मैं ये बात साबित करके दिखाऊंगी। मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारे मैसेज का, और एक बार तुम मुझे वो पेपर्स भेज दो तो मैं जल्दी से जल्दी अपना काम पूरा करके उस घर और अर्जुन को छोड़कर हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शान ने मैसेज रेहान को दिखाया तो उसके लबों पर एविल मुस्कान फैल गई। उसने शान को देखते हुए कहा, मछली खुद हमारे जाल में फंसने के लिए छटपटा रही है। कितनी एक्साइटेड है वो तुझे पाने के लिए। लगता है उसके तो पैर ही जमीन पर नहीं टिक रहे होंगे कि उसने फिर से तुझे अपने जाल में फंसा लिया। पर वो बेवकूफ ये जानती ही नहीं है कि इस बार वो शिकार बनने वाली है, वो भी हमारा। वैसे कितना मजा आएगा ना जब वो आसमान की इन ऊंचाइयों से मुंह के बल जमीन पर गिरेगी, जब उसको पता चलेगा कि तूने उसका इस्तेमाल किया उसी के खिलाफ, और अब ना तो वो कभी तेरी जिंदगी में शामिल हो सकती है और ना ही अर्जुन इतना सब होने के बाद उसको अपनी जिंदगी और अपने घर में रखेगा। पर उसमें अभी वक्त है। पहले तू मुझे ये बता कि वकील से बात हुई तेरी, कब तक सारे पेपर्स रेडी हो जाएंगे? 3 से 4 दिन लगेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इन तस्वीरों से काम चला लेते हैं। तुझे पता है ना अब तुझे आगे क्या करना है? शान का सवाल सुनकर रेहान ने शातिर मुस्कान के साथ उसे देखा तो शान ने नफरत भरी निगाहों से सामने रखी तस्वीरों को देखते हुए कहा, अब देखते हैं कैसे अर्जुन अपनी डियर वाइफ की धोखेबाजी को बर्दाश्त करता है। मैसेज से उसको शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ा, पर इन फोटोज को देखने के बाद धमाका होना तो तय है उस घर में, और जब उस घर में आग लगेगी तो मेरे दिल को ठंडक मिलेगी। रेहान उसकी बात से सहमति जाहिर करने के बाद उठकर खड़े होते हुए बोला, चल अब मैं चलता हूँ, पहले तेरा काम करूंगा, उसके बाद घर जाकर फ्रेश होकर शूट पर भी जाना है। दोनों दोस्तों ने गले लगकर एक दूसरे को बाय कहा, फिर रेहान सारी फोटोज और वो पेनड्राइव एक लिफाफे में रखकर वहां से चला गया। शान भी अपने काम में लग गया। निया घर पहुंची और कमरे में आई तब भी अर्जुन उसी तरह वहीं बैठा हुआ था। सुबह के 7 बज गए थे। निया ने लाइट्स ऑन की और आगे कबर्ड की तरफ बढ़ गई। अर्जुन की निगाहें उसी पर टिकी थीं। निया जैसे ही अपने कपड़े लेकर पलटी, अपने ठीक सामने खड़े अर्जुन को देखकर एक पल को घबरा गई, पर अगले ही पल गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, ये क्या तरीका है, मेरा रास्ता रोककर क्यों खड़े हो? अर्जुन की गुस्से से लाल आंखें लगातार उसे घूर रही थीं। निया के तेवर देखकर उसको अब समझ आ रहा था कि आजकल वो इतने उखड़े हुए मूड में क्यों रहती है, उससे हमेशा इसी लहजे में बात क्यों करती है, क्योंकि अब उसे उसकी जरूरत नहीं है, उसे कोई और मिल चुका है। निया भी उसको गुस्से से घूरने लगी। अर्जुन कुछ सेकंड तक उसको खामोशी से घूरता रहा, फिर उसने बेहद गुस्से भरे लहजे में उससे सवाल किया, इस वक्त कहाँ से आ रही हो, कहाँ थी सारी रात? उसके सवाल पर निया ने भड़कते हुए कहा, कहीं भी थी, तुम्हें ये जानने का कोई हक नहीं है। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ कि कब कहाँ जाती हूँ, किसके साथ हूँ, किससे बात करती हूँ, सबकी रिपोर्ट तुम्हें दूँ।
मुझे आम लड़की समझकर दबाने या पति होना का रौब छाड़कर मेरी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश भी मत करना। मैं अपनी जिंदगी के फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हूँ। पूरी आजादी है मुझे कि मैं जहां मर्जी जाऊं, जिसके मर्जी साथ रहूं, जिससे मर्जी बात करूं। तुम मुझे रोकने या मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं रखते, समझे? वो अर्जुन के साइड से निकलकर बाथरूम में चली गई। अर्जुन सब समझ रहा था, पर उसने आगे कुछ नहीं कहा और वहां से चुपचाप चला गया। निया भी कुछ देर बाद तैयार होकर शूट के लिए चली गई। सृष्टि जब सोकर उठी तो रेहान उसके पास बैठा बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेर रहा था। सृष्टि ने लबों पर मुस्कान सजाए उसको अपनी अधखुली आंखों से देखा, फिर आगे बढ़कर उसकी गोद में अपना सर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी इस हरकत से रेहान के लबों पर मुस्कान ठहर गई। उसने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर सवाल किया, रात को ठीक से नींद आई? अकेले डर तो नहीं लगा? सृष्टि ने उसकी गोद में सर रखे लेटे लेटे ही जवाब दिया, भाई आप भूल गए हैं, अब आपकी बहन बड़ी हो गई है। वो तो मुझे पता है कि मेरी गुड़िया बहुत बड़ी हो गई है, पर मुझे तो तेरी चिंता अब भी बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे बचपन में होती थी, क्योंकि मेरी गुड़िया का दिल अब भी बिल्कुल बच्चों जैसा नाजुक है और इस दिल में अपने भाई के लिए बहुत सारा प्यार है। अच्छा भाई, आप कल रात को कहाँ थे? किसी काम में उलझा हुआ था, तू बता ठीक से सोई या नहीं? मैं ठीक से सोई, पहले नींद नहीं आ रही थी फिर आ गई, पर आगे से आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाइएगा, मुझे सच में अकेले में डर लगता है। सृष्टि अब मासूम सा चेहरा बनाकर आंखें खोलकर उसको देखने लगी। रेहान ने उसकी बात सुनकर प्यार से उसके माथे को चूमते हुए कहा, कोशिश करूंगा अगर फिर भी कभी रात को ना आ सका और तुम घर में अकेली रहो तो शान के घर चली जाना, वहां बड़ी माँ होंगी, भाभी भी होंगी तो तुम्हें कंपनी मिल जाएगी। ओके, अच्छा बताइए क्या आप अभी अभी आए हैं? सृष्टि ने अब बेड से उतरते हुए कहा, तो आप जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए एकदम कड़क कॉफी बनाकर लाती हूँ, उसे पीकर आपकी थकान उतर जाएगी, फिर आप मेरे लिए यमी यमी नाश्ता बना देना। वो झट से कमरे से बाहर भाग गई और उसकी बात सुनकर रेहान की हंसी छूट गई, वो अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद सृष्टि दोनों के लिए कॉफी बनाकर वहीं ले आई। दोनों भाई बहन ने साथ में बैठकर कॉफी, साथ में सृष्टि उसको कल के दिन की सारी बातें भी बताती जा रही थी।
सृष्टि की आदत थी वो अपने हर दिन की बात रात को उसको बताती थी, पर कल तो रेहान घर आया ही नहीं था तो वो अपनी बातों का कोटा अब पूरा कर रही थी और रेहान भी मुस्कुराकर उसकी बातें सुन रहा था। कॉफी पीने के बाद सृष्टि नहाने के अपने कमरे में चली गई, रेहान भी अब नहाने चला गया। सृष्टि नहाकर तैयार होकर सीधे किचन में पहुंच गई जहां अभी रेहान दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। सृष्टि उसके पास चली आई, फिर अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, और कितनी देर लगेगी भाई, मेरे पेट में चूहे भूख से कबड्डी खेलने लगे हैं। आवाज़ सुनकर रेहान ने सर घुमाकर देखा तो सृष्टि पलके झपकाते हुए क्यूट सी शक्ल बनाकर उसको देख रही थी। वो इस वक्त बहुत ही क्यूट लग रही थी। रेहान ने एक सैंडविच उसके मुंह में डालते हुए कहा, इसे खाते खाते बाहर आ जा। इतना कहकर वो ट्रे लेकर बाहर चला गया। सृष्टि ने तुरंत सैंडविच पकड़ा और उसको खाते हुए बाहर चली आई। रेहान ने उसकी प्लेट में दो सैंडविच के साथ सॉस डाला और एक ग्लास जूस भी उसके सामने रखने के बाद अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। सृष्टि भी नाश्ता करने लगी। नाश्ते के बाद सृष्टि ने बर्तन धोए, फिर कुछ देर बाद दोनों भाई अपने अपने काम के लिए निकल गए। टू बी कंटिन्यूड।